संतप्त मानस शांत हूं, इनके गुणों के गान में अर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम गाथा नंबर 286 और 87। विगत गाथाओं में और उसकी टीका में द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव बताया था। अब आगामी गाथाओं में द्रव्य और भाव की उसी निमित्त नैमित्तिकता को सुदाहरण समझाते हैं। इस समय सार की खास विशेषता है कि शुरू शुरू में जब उस चीज को पढ़ते हैं तो बहुत अटपटा लगता है, जैसे पिछली गाथाओं में भी, कि यदि हम द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण के दो दो भेद नहीं करेंगे तो फिर भगवान आत्मा अकारक सिद्ध नहीं होगा। तो अकारकता से इनके भेदों से क्या संबंध है, ऐसा लगता था ना। और बाद में अपन ने गहराई से पढ़ा तो ये बात अपने ख्याल में आई कि कोई भी कार्य का कर्ता तो होना चाहिए ना। तो निमित्त की दृष्टि से द्रव्य कर्म के उदय से मोहराग देश होते हैं और मोहराग देश से फिर द्रव्य कर्मों का बंद होता है। माने द्रव्य अप्रतिक्रमण से भाव अप्रतिक्रमण होता है। अप्रतिक्रमण माने रागादिक दोषों का होते रहना, अप्रतिक्रमण माने उनका नहीं होना, माने उनका कर्ता मैं नहीं हूं ऐसा मानना। तो कहते हैं कि यदि हम नहीं मानेंगे द्रव्य और भाव को दो दो भेद करके तो फिर भगवान आत्मा उनका कर्ता बन जाएगा। भगवान आत्मा को अकर्ता सिद्ध करना है तो ये दो दो भेद हमें करना ही पड़ेंगे। ऐसे ही अब अगली गाथाओं में कहते हैं उसी बात को उदाहरण से सिद्ध करते हैं। और उदाहरण में क्या है, आधा कर्म और औद्देशिक आहार आदि की चर्चा करते हैं। तो इससे लगता है कि उसी बात का जो पिछली गाथाएं चल रही थी इनमें उदाहरण कैसे हो गए, ये तो बिल्कुल अलग चर्चा है कि उद्देश्य का आहार किसे कहते हैं, अधा कर्म आहार किसे कहते हैं, इसको उनका उदाहरण कैसे। तो अभी अपन पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा, गहराई में जाएंगे जब, कि इनका उससे क्या संबंध है। पढ़ो गाथाएं।
आधा कम्मा दिया भोगल दबस जे में दोसा, कहते को बदिराणी पर दब गुणा दुजे निश्चम। आधा कम्मम उदे सियम च भोगल मयम इमम दबम, कहतम मम हो दिकयम जमणिश्चम चेदणम भुस्तम। अदाह कर्मक आदि जो पुद्ध गल दरब के दोष हैं, गुण रूप उनको ज्ञानी जन कैसे करे। उद्देशिक आधा कर्म जो पुद्ध गल दरब मैं अचेतन, कहे जाते वे सदा मेरे किए किस भांति हो।
अधा कर्म और उद्देश्य मुनिराजों के जीवन में, नंद दिगंबर मुनिराज जंगल में रहते हैं तो और तो कोई काम करते नहीं जिसके वे कर्ता बने। अकारक है ना, अकारक को दो तरह से सिद्ध किया था ना, कि एक तो स्वभाव से ही अकर्ता है और दूसरे तो साक्षात अकर्ता है। जब उनका प्रतिक्रमण कर देता है, प्रत्याख्यान कर देता है, तो वो साक्षात अकर्ता हो जाता है। तो अब मुनिराजों के जीवन में वो कहते हैं कि कहीं वो ठहरते हैं, भोजन आहार लेते हैं, तो जहां वो ठहरे वो जगह और जो आहार उनने लिया उसमें उनका उसका दोष उसका कर्ता उन्हें कैसे कहा जा सकता है। क्या भोजन किया तो पहले तो अपन ये समझ लें कि आधा कर्म क्या है और उद्देश्य क्या है, फिर अपन इस बात पर घटित करेंगे कि उसी बात के जो उदाहरण कैसे हैं, ये मुद्दा बाद में उठाएंगे, समझे ना। पहले तो हम दोनों को समझ लें। मुनिराजों के जीवन में दो ही चीजें पाई जाती हैं, उन पर यही दोष मारा जाता है। नन्हे दिगंबर हैं, ऋषि कमंडल, एकाध पुस्तक के अलावा उनके पास कुछ नहीं है कि वे अधा कर्म और औद्देशिक आहार विहार आवास तो नहीं करते हैं। देखो अधा कर्म आदि जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं उन्हें ज्ञानी माने आत्मा कैसे करे, क्योंकि वे तो सदा परद्रव्य के गुण हैं। पुद्गल द्रव्यमय अधा कर्म और उद्देश्य मेरे किए कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे सदा अचेतन कहे गए हैं। समय सार की ऐसी बात है, वो ऐसे बात करता है जैसे सब लोग सब समझते हैं। अब अधा कर्म और उद्देश्य का आहार की बात कर रहे हैं तो ये तो बता ही नहीं रहे हैं कि अधा कर्म किसे कहते हैं और उद्देश्य किसे कहते हैं। वो तो कहते हैं कि अधा कर्म को और उद्देश्य आहार को ज्ञानी जन माने मुनिराज उसके कर्ता कैसे हो सकते हैं, माने उसके कर्ता भी नहीं है। अब अधा कर्म क्या है, उद्देश्य क्या है, वो तो बात ही नहीं करते हैं। वो मान के ही चलते हैं कि तुम सब समझते ही हो, क्योंकि भाई मुनिराज है ना उनके सबके सामने, और वो जाना ही वो बात मुनि भय इतनी बात तो समझते ही है कि हमें कैसे आहार लेना चाहिए, कैसे विहार करना चाहिए, कैसे कहीं आवास करना चाहिए। ऐसे पीछे की बात करते हैं, द्रव्य प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण द्रव्य अप्रतिक्रमण भाव अप्रतिक्रमण ये क्या है वो समझाते नहीं है। वो तो कहते कि इनमें परस्पर निमित्त अनिमित्त संबंध नहीं हो तो भगवान आत्मा आकार कैसे सिद्ध होगा, समझ गया ना। निद्रा अधिकार शुरू करते हैं तो ये तो समझाते ही नहीं कि निद्रा किसे कहते हैं। फिर तो कहते हैं ज्ञान मंत्र के भोग भी निद्रा के हेतु है, यहां से शुरू करते हैं। बंद अधिकार है तो बंद कैसे होता है और बंद कैसे नहीं होता है उसकी चर्चा करते हैं। बंद किसे कहते हैं उसकी बातें ही नहीं करते हैं, माने इतनी वो मान के चलते हैं कि हमारा जो श्रोता है वो फंडामेंटल जानता है, इसलिए समय सार को समझने और समझाने के पहले मुख्य रूप से पंचास्तिका है, तत्वार सूत्र है, छह डाला है, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य होना चाहिए। मैंने हम इतना नई तरह बातें हैं वो कैसे उसकी समझ में आएंगी, ख्याल में है ना। देखो अधा कर्म आहार और उद्देश्य आहार को आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, इसलिए अपन ने वो उनको पहले अधा कर्म और उद्देश्य किसे कहते हैं इसकी चर्चा करते हैं। और आज का सबसे ज्यादा विवादस्त विषय है स्वयं पाकेन उत्पन्न आहार अधा कर्म शब्देन उच्यते। स्वयं अपने द्वारा बनाया हुआ भोजन उसको अधा कर्म कहते हैं, बोला नीच कार्य, अधा माने नीच, कर्म माने कार्य। हमें मुनिराज खुद भोजन बना के करें तो उसका नाम अधा कर्म कहलाएगा, उन्होंने बहुत नीचा काम किया। और देखो स्पष्ट है ना, स्वयं पाकेन उत्पन्न आहार अधा कर्म शब्देन उच्यते, बहुत क्लियर है ना। आहार ग्रहणात पूर्वम तस्य पात्रस्य निमित्तम यत किम अपि अनुसंपानादि कृतम तदोपदेशकम भन्नते। आहार ग्रहण करने के पहले जिस उस पात्र को जो भोजन करने वाले हैं मुनिराज, यदि उनके निमित्त से कोई भोजन पान मन पानी अन्नपान का करना, उस वह तदोद्देशक भन्नते, उसको उद्देशक आहार कहते हैं। ये तो अधा कर्म और उद्देशक की परिभाषा जैसन ने दी। अधा कर्म तो ज्यादा बड़ा दोष है, उद्देशक अपेक्षाकृत छोटा, क्योंकि अधा कर्म तो उसने खुद नहीं बनाया और उद्देशक में उसके लिए दूसरे ने बनाया, तो उस आहार को उद्देशक आहार कहेंगे। अभी घबराना नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। पंक्तियां इसमें अपन को 5-7 पेज पढ़ने हैं और उन पेजों में धीरे धीरे सब बात स्पष्ट होगी, है ना। और आवश्यकता पड़ेगी तो अपन स्वयं अपनी तरफ से भी उस बात को चर्चा कराएंगे। स्वयं बनाने से संपन्न हुआ आहार अधा कर्म शब्द से कहा जाता है, और आहार ग्रहण करने से पहले उस पात्र के निमित्त से जो कुछ अन्नपान संपन्न किया जाता है उसे औद्देशिक कहते हैं। अधा कर्म और औद्देशिक, ये दो परिभाषाएं जयसेन ने दी, जरा ये समझ लेना। अभी ये बात नहीं चल रही कि ये दोष है कि गुण है। हाँ, अभी तो अधा कर्म की परिभाषा है, औद्देशिक की परिभाषा है। अब मुनिराजों को औद्देशिक नहीं लेना चाहिए कि लेना चाहिए, अधा कर्म नहीं लेना, तो बाद में बात करेंगे। अभी तो ये सामान्य कथन है कि हमने किसी दूसरे के उद्देश्य से बनाया तो हम उस आहार को उद्देश्य कहेंगे। ख्याल में आई ना, अपने भोजनालय में 200 लोगों का भोजन बन रहा है, क्यों, कभी विद्यार्थी सब रहते हैं ना छात्रावास में, उनके लिए बन रहा तो उनके उद्देश्य से बनाया है तो उसे औद्देश्य हो गया। तो इन विद्यार्थियों को भी नहीं करना चाहिए ना भोजन, अरे औद्देश्य आहार के त्यागी थोड़ी। ये तो औद्देशिक है, ये दोष है कि गुण है, अभी ये बात कहां हुई। और कहा कि नहीं भैया, तो रसोईया भाग गया है, अभी तुमको खुद बनाना है, भले अपने लिए खुद बना रहे तो वो आधा कर्म हो जाएगा और वो औद्देशिक हो जाएगा। ये तो तुम्हारा महाभाग्य है, तुम्हें ऐसा दिन कभी नहीं देखना पड़ा। तो हम पढ़ते थे छात्रावास में, तो महीना में 2-4 दिन तो ऐसे दिन हमको देखने पड़ते थे। एक प्यारे लाल नाम का रसोईया था, कभी भी भग जाता था, आकाश से उतर के तो ला नहीं सकते थे, क्या करे, मिल बांट के काम कर करा करके, और खुद को ही करना पड़ता था, जैसी भी बने कच्ची पक्की, और खाना पड़ता था। अभी मैं ये बात कह रहा हूं कि अधा कर्म और उद्देश्य का अर्थ बता रहे हैं, अभी मुनिराज को नहीं लेना चाहिए, बात तो ये है ना। अधा कर्म और उद्देश्य का आहार आखिर सारी दुनिया तो करती ही है ना, खुद बना के खाती है, अरे खुद कमा के भी खाती है ना, क्योंकि इनका आहार का त्याग है मुनिराजों के, और गृहस्थ के त्याग नहीं है। धर्म के दर्शन किताब में मैंने स्वयं ही लिखा है कि जिन लोगों को कमाकर खाना चाहिए वे बनाकर भी नहीं खाना चाहते हैं, हैं? और जिन्हें जंगल में रहना चाहिए वे भी मठ मंदिर में रहने लगे हैं, और जिन्हें घर में रहना चाहिए वे भी मठ मंदिर में रहने लगे हैं। वनवासी न वनवासी रहे और गृहवासी न गृहवासी रहे, गृहस्थ माने गृहस्थ और गृहवासी एक ही है ना, गृह माने घर और स्था माने उसमें रहने वाले, गृहस्थ तो गृहवासी हो गया ना। और धर्म दो प्रकार का है ना, एक मुनि धर्म एक गृहस्थ धर्म। तो जब तक तुम मुनि नहीं हो, कैलाश जी सुनना ध्यान से, तब तक तुम गृहस्थ हो, चाहे तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो चाहे नहीं हो, चाहे शादी नहीं की हो, उस शादी करने से कोई गृहस्थ नहीं होता, तो तुम्हारे नाम घर मकान होने से तुम गृहस्थ नहीं होते। जब तक नग्न विगम्बर दशा नहीं हुई है तो या तो तुम गृहस्थ हो और या तुम साधु हो, समझ में आई ना। अब और आगे बढ़ो कि ये तो गृहस्थ और साधु की बात है, गृहस्थ धर्म अलग चीज है। गृहस्थ तो मिथ्या दृष्टि भी है, अजैनी भी है, हिंदू मुसलमान भी है, लेकिन वो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते हैं तो अपना जो गृहस्थ धर्म है ना वो मुनि धर्म है, तो उसमें नहीं आते हैं ना। तो गृहस्थ का मतलब समझ गए ना, माने नग्न दिगंबर दशा तुम्हारी नहीं हुई है। देखो अपने शास्त्रों में तीन लिंग स्वीकार किए हैं साधुओं के, एक मुनि का नग्न दिगंबर, एक आरिका का, एक वस्त्र का धारी, और एक ऐलक का सुल्लक का, ये उत्कृष्ट श्रावक का। ये तीनों एक तरह से गृह के त्यागी होते हैं, ये तीनों अपने घर में नहीं रहते हैं और बना के नहीं खाते, बना के नहीं खा सकते, इसमें पराधीनता लगती है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता हूं कि बनाकर नहीं खाते, भले ही भूखे रहना पड़े, उनकी इतनी तैयारी है क्या? ये तो हमारी समाज की व्यवस्था है, और सारा समाज इस बात को अपनी जिम्मेवारी समझता है कि जो भी ये साधु संत हैं इनके आहारादि की व्यवस्था हम करें, तो बहुत गंभीरता से उसे निभाता है, ये समाज का बहुत बड़ा गुण है। अन्यथा जैन दर्शन में जो मुनि धर्म है वो उसका पालन संभव ही नहीं था, जो भी दीक्षा लेता उसको मृत्यु का ही वरण करना पड़ता, क्योंकि क्यों किसी कोई बाध्यता तो है ना, हमारे गृहस्थों में भी ऐसी बाध्यता है क्या कि कोई किसी को बना के खिलाए? तो थोड़ी इतनी तो है ही कि जो बच्चे नाबालिग हैं उन बच्चों को मां बाप खिलाएं, है ना। और अपनी अपनी सासरी और मर्यादाएं देखो तो पति कमा के लाए, पत्नी बनाकर खिलाए, ऐसी मर्यादाएं हैं ना आपस में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य थी। लेकिन समाज की क्या मर्यादा है? समाज किसी को खिलाए क्यों, कमा के बना के, ये कोई जिम्मेवारी है ना दिलीप भाई किसी के माथे पे? मान लो हमने अपने माथे पे ओढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, ये आप करें, आप क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि जो ये व्यवस्था करना अपना ड्यूटी कर्तव्य समझता है उनकी तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये व्यवस्था चाहते हैं उनकी तरफ से बहुत बुरी बात है। मैंने अपना सारा बोझा उन्हें डाल दिया उन पर। हम गृहस्थ हैं पर हमने घर में चौका ही नहीं रखा, हमने अपने पास में वो गैस का चूल्हा नहीं रखा, स्टोव ही नहीं रखा, समझ गए, बेलन नहीं रखा बेलने का, क्यों पीसने की चक्की ही नहीं रखी। तो अब यही हालत हो गई ना मुनिवादन जैसी कि हमें कोई भोजन कराए तो ही हम खाए, नहीं तो हमको भी मृत्यु लेनी पड़ेगी, ऐसे ही अर्थ हो गया ना। नहीं? और समाज की तो कभी कोई गारंटी है नहीं, ये तो हम बहुत लिमिटेड समाज हैं, और जहां जैन समाज होती है वहीं जो हमारे साधु संत जाते हैं और वे ब्रह्मचारी लोग जाते हैं और वो अपनी ड्यूटी समझ करके सारी व्यवस्था करता है। अन्यथा आप कल्पना करो कि रेल से आप जाना नहीं है, पैदल आपको जाना है, पर यहां से 200 किलोमीटर तक एक भी जैनी का घर नहीं है तो क्या करेंगे फिर? आखिर मुनिराज भी आजकल ऐसे व्यवहार करते हैं तो क्या होता है? फिर हमें समय से कर जाना है, क्या होता बोलिए? सब चौका साथ में चलता है तो फिर वो ही होगी ना व्यवस्था। तो अब इससे ज्यादा और बात क्या करना है? मैंने जो अपने घर की व्यवस्था नहीं रखेंगे वे पूरी तरह समाज पर निर्भर हो गए, तो उनको यहां से शिकल में समेत जाना है तो एक साथ में चौका चलना ही पड़ेगा, और समाज वो व्यवस्था करेगी, उसकी ड्यूटी है। ये बात, ये भ्रम जितनों तक दिन बना रहे बहुत अच्छा है, तो व्यवस्था होती रहेगी। क्यों? यदि ये धर्म समाज का टूट गया कि हमारे इनने मुनि वृद्ध लिया है, इनने ब्रह्मचारी वृद्ध लिया है, इनने घर छोड़ा है अपनी व्यवस्था, तो हमारे घर उसे थोड़ी छोड़ा है, तो फिर जेनी जगह जगह बसने फिर हर रास्ते पे बसने जाए, हमें अपने यहां हैं और अपने घर पे बना करके आपको किसी भी विधि से भोजन करा दें, लेकिन वो व्यवस्था कैसे बने? महेंद्र जी बोलो, बताओ मुझे कि यहां से समय शिकर तक के हर गांव में 10 किलोमीटर पर जैनी होना चाहिए और वो जैनी वहां बसें और ये व्यवस्था करें। इसमें से ही सारा रहस्य निकल गया उद्देश्य का हार का है? तब वो गृहस्थ ने भी यही नक्की कर लिया, फिर मैं तो नहीं बनाऊंगा खाऊंगा। अब वो तो शास्त्र के हिसाब से भी, शास्त्र के हिसाब से भी ड्यूटी नहीं है, समाज की तो ये ड्यूटी नहीं है ना। अब ऐसे समाज को गालियां दे कि समाज मेरी व्यवस्था नहीं करती, मेरी व्यवस्था नहीं करती, तो कहां है शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की बात? शास्त्र में तो किसी के प्रति उनने कभी बताया नहीं है कि कोई यदि ऐसा कर ले तो उसे हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं है ना। बोलो तो ये धर्म के 10 लक्षण में मैंने आज से 30-35 साल पहले लिखी थी ये बात कि जिन्हें कमाकर खाना चाहिए ना वे कमाकर खाते हैं, जिन्हें बनाकर खाना चाहिए बनाकर भी नहीं खाना चाहते हैं, क्यों है? और वे दोनों एक साथ मठवासी हो गए हैं, मंदिरवासी हो गए हैं, अब कौन बचे फिर? अनुवृत्ति और महावृत्ति दोनों मंदिरवासी हो गए, अब तो अवृत्ति बसे ना, अब तो मिथ्या दृष्टि बचे ना, अब सम्यक दृष्टि भी अपने को कम नहीं समझते हैं। जो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है ना वो तो आज मुनि से भी ज्यादा पूछना चाहता है, वो तो एक गिलास पानी उठा करके नहीं पीना चाहता है। देख देखो बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए है? सब सम्यक दृष्टियों को देखो, जो जो अपने को जिन्हें भ्रम भी पैदा हो गया है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, वो एक गिलास पानी उठा के पीना चाहता है क्या? वो दुकान खोल के धंधा करना चाहता है क्या? तो अब ये फिर बच्चे कौन बताओ मुझे, मिथ्या दृष्टि। तो वे इनकी सब व्यवस्था करें तो विरोध कौन करेगा? विरोधी दल भी तो होना चाहिए। इस व्यवस्था से ये बात स्पष्ट है, मुनिराज अधा कर्म औद्देशिक आहार लें तो अपराधी हैं, और गृहस्थ अधा कर्म और औद्देशिक आहार न लें तो अपराधी हैं। इसलिए अधा कर्म और औद्देशिक की परिभाषा बताई जा रही है, तो एकदम अभी घबराओ मत, अभी तो उन दोनों का स्वरूप समझो, वो किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, ये इसकी बात है। क्यों मुनिराज, एक कपड़ा ऊपर से ओढ़ लें तो वे मुनिधर्म के हिसाब से सही नहीं है, और गृहस्थ कितनी भयंकर गर्मी पड़े और कपड़ा खोल के एकदम नंगा हो जाए, क्यों, तो वो भी पागल हो जाए, माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा? जैसे वो कपड़ा रखना धर्म कैसे हो गया बोलो? ये शरीर को कपड़े से ढकना धर्म हो गया ना, गृहस्थ का धर्म है क्या नहीं है कि वो भी नंगा हो जाए? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अभी अधा कर्म और औद्देशिक आहार की मैं जो चर्चा कर रहा हूं, वो अभी उसको दोष और गुण की दृष्टि से मत देखो, अभी तो पहले उसका स्वरूप समझो। आप अध्यसनाचार्य कह रहे स्वयं बनाकर खाना ये अधा कर्म है, समझे ना, तो हमारी महिलाएं सब अधा कर्म वाली हैं। और ये पुरुष उद्देश्य वाले हो गए, क्योंकि इनके उद्देश्य से वो बनाती हैं। सब महिलाएं यदि घर में पुरुष नहीं हो, परदेश गए हो, तो वे खाने नहीं बनाती, शाम को ही नहीं बनाती हैं, बासा कुछा कुछ खा लेती हैं, तो नहीं खाए रह जाती हैं। 99 महिलाओं की ये पोजीशन है सारे देश में। तो वे उद्देश्य आहार वाले हो गए, वे अधा कर्म वाले हो गए। अभी तो ये समझो ये दोष है, ऐसा नहीं समझो, अभी दोष की बात अभी आएगी आगे। ये तो उदाहरण दे रहे काय का, काय का द्रव्य प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण, तो द्रव्य प्रत्याख्यान भाव प्रत्याख्यान, और चार जे वो चार उनके उल्टे अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण, आठ चीजें हैं ना, उनके उदाहरण दे रहे। कैसी विचित्र बात है, अब हम कहां एक बात पे जम के रह पाते हैं, हम तो उद्देश्य बात आते ही मुनिराज आते हैं और उन्होंने उद्देश्य हार लिया, पर हमारा एक झगड़ा शुरू हो जाता है। अधा कर्म तो कोई है ही नहीं, कोई मुनिराज बना के तो खाता ही नहीं है, क्यों? पर अब जो एक निकल गए ना, कौन निकल गए? आचार्य जयसेन, पूछूंगा विद्यार्थियों से तो पूछ ही सकता हूं ना, अधा कर्म आहार किसे कहते हैं, औद्देशिक किसे कहते हैं, और जयसेन की तरह की अपेक्षा किसे कहते हैं? अब जयचंद की बात, जयचंद कौन कौन क्या क्या कहते हैं, मैं पहले जो मुख्य आपके आदमी हैं उनको आपके सामने पेश करता हूं, फिर अभी निर्णय अपन करेंगे कि क्या है। पंडित जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में अधा कर्म और उद्देशिक आहार को जिस प्रकार समझाते हैं वह उन्हीं की भाषा में इस प्रकार है। ये मैं कहता हूं उन्हीं की भाषा में, इसका क्या अर्थ है, कभी मैं अपनी भाषा में बोलूं तो मेरा हो जाएगा, इसका मैंने अपने स्वार्थ से अब अपनी खोटी मान्यता की वजह से उसको ढाल दिया, इसलिए उन्हीं की भाषा में मैंने लिखा है और मैं पढ़ के ही सुनाना चाहता हूं, अपनी तरफ से बोल के नहीं। जो पाप कर्म करी आहार निपजे ताकू अधा कर्म निष्पन्न कहिए, और जो आहार किसी के निमित्त निपजे ताकू उद्देशिक कहिए। ये ढूंढारी भाषा पंडित जयचंद छावड़ा की मूल भाषा है, पर जानबूझकर मैंने उसका अनुवाद नहीं लिखा। ये उर्दू मूल भाषा जो है ना, ऐसा हमारे पास समय सार है जो बिल्कुल उनकी मूल भाषा में है, ढूंढाड़ी में, और उसका ही मैंने यहां पर कोटेशन दिया, क्योंकि उस शब्दों में हेर फेर न हो जाए। जो दोनों में बहुत अंतर आ गया शांति जी, देखा क्या नहीं, उनने तो कहा स्वयं बनाना और दूसरा किसी के निमित्त से बनाना उद्देश्य से। और इसमें ये कहते हैं कि पाप कर्म कर आहार निभ जाए, जो चूल्हा जलाएंगे तो वहां जीव जंतु होंगे वो मरेंगे, इसमें है ना। और उसमें जो होती है ना गृहस्थ की क्रिया, खाना बनाने जी, इसको बोलते हैं ना आरंभ, परिग्रह और आरंभ त्याग है ना, तो परिग्रह त्याग माने अपने जो संपत्ति का त्याग कर देते हैं, और आरंभ त्याग माने खाना बनाने का त्याग, ये सब घर में व्यवस्था रखना। तो वो कहते हैं पाप कर्म कर निपजे, उसमें हिंसा होती ही है, कितना ही आप शोध का बनाए, कितनी हिंसा से बचें, बचना चाहिए। फिर भी आज इस विज्ञान के जमाने में तो कितना स्पष्ट हो गया कि जैसे पानी छान कर पीने की बात है ना, पर तो पहले तो सीधी सच्ची बात थी, कुएं से पानी लिया, उस पानी को हमने दोहरे छन्ने से छाना और बेल छन्नी कुएं में डाल दी, अब वो पानी बिल्कुल अहिंसक हो गया है ना। ऐसा हम था, हमारे क्षेत्र में कोई हिंसा हो रही है मानते ही नहीं थे, अब आप आज तो कहते हैं कुएं तो इसके कारण रहे ही नहीं, कुएं में तो कीड़े ही कीड़े हैं, कि पानी में लाओ तो कीले बिलबिला भी दिखते हैं, और नल में से पिलाओ तो नल में तो पानी बेल छन कैसी डालें, वो तो वहीं डालनी पड़ेगी क्यों। फिर और बात कहते हैं कि और जो आजकल के जो निकल गए उपधान, कि उनमें तो हम अपने पेट को बचाते हैं, जीव तो बचते नहीं है। जो भी हम पानी को शुद्ध करने की विधियां हैं उसमें यद्यपि अकेली जीव जंतुओं को ही निकालने की बात नहीं है शांति जी, धूल मिट्टी भी निकालनी है, क्योंकि वो भी हमें नुकसान करती है ना। जैसे बोलते ना बिल्कुल शुद्ध पानी, आरओ का पानी, एक्वा गार्ड का पानी, बिस्लरी का पानी, तो वो उसमें से धूल मिट्टी भी निकालते हैं, मिनरल्स भी निकालते हैं, और वो जीव जंतु भी निकालते हैं, लेकिन वो निकाल के उनका क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, समझे ना। हमारे पेट में पानी है वो शुद्ध जाना चाहिए, तो उसमें अहिंसा की बात कहां रह गई। अब इसके आगे चलते हैं, क्या हम दोहरे छन्ने से पानी छाने तो उसमें कोई जीव नहीं रहता है, यहां बहुत निकल जाते हैं बैक्टीरिया, लेकिन कुछ तो रह ही जाते हैं, बोलते क्या नहीं बोलते दिस जीव, और स्थावर तो है ही, जल स्वयं जीव है ना, अग्नि जीव है, वृक्ष जीव है, जो हमारे भोजन में सब चीजें आती हैं, ये सब जीव हैं, तो पूरा निर्जंतु तो नहीं होता कि नहीं नहीं, फिर हम उसे प्रासुक करते हैं, तो वे भी बचे खुचे जो होते हैं वे भी खत्म हो जाते हैं। और जरा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उपाय तो कुछ है नहीं, समझना तो पड़ेगा ना, कि बहुत से जीवों को हमने बचा लिया, और जहां जैसे कुएं में बेलछनी डाली थी, अभी नल का पानी, नदी की बेलछनी कहां डालोगे, नदी में डालोगे ना, उसी पानी में तो डल नहीं सकती है, जब तक तुम छानोगे तब तक वो पानी आगे बढ़ जाएगा, अब जो बाद का पानी आएगा ना उसी में डलेगी ना दादा, नदी की तालाब की, तो अब ये समझ लो कि नल में से नदी बह रही, अब वो पानी जाना था जहां हमने बेलछनी वहीं छानी, तो वैसे उसी धारा में चला गया आगे, और क्या होगा, اتنا اس میں ہم کو زیادہ آکلت ہونے کی کہاں بات رہ جاتی ہے. خیر اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو منی راج لوگ اپن کو بتائیں ساسوں میں لکھاؤ کو پالن کرنا ان کی آجیا سروپری ہے. اپن تو تھوڑا بچار کر رہے ہیں گمبھیرتا سے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ وہ جیو جنتو انہیں ہم بالکل گرم پانی کر کے پھر بے ختم ہو جاتے ہیں. تو بے تو ختم ہوئے نا, تمہارا پیٹ بچانا, وہ جیو تو مرے کہ ہم نے بہت بچا لیے چھان کے. تو بہت بچائے, پورے تو نہیں بچے, بہت بہت تو نہیں, بہت بہت کم رہ گئے, بہت کم رہ گئے. سنیے نا آپ کی میں, اب وہ مرے تو وہ جیو جنتو سے نہیں تو سنتان انترمورت کے بعد میں پھر بھی وہ اتنا انت ہو جاتے. تو ابھی ہم نے کر کے گرم کر دیے تو 24 گھنٹے تک اس میں کوئی جیو جنتو نہیں بنیں گے. ایسے ہی اپنی مریادا ہے نا شاستری جی, نہیں تو پھر پیدا ہو جائیں گے. تو اب وہ ہم نے مطلب ہمارا جیون تو اسی لیے وہ ادھا کرم ہوا. اس لیے دیتن جی کی شبد میں کہ پاپ کرم کر آہار نپجے, آپ سمجھ گئے نا, یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. تو وہ سروتا نردوش نہیں ہوا, اس کو پنیہ کاری نہیں مانا جا سکتا. وہ کم ہنسک ہوا, ہنسک نہیں ہوا. اب یہ پھلوں میں بھی کرتے ہیں نا ایسا کہ وہ جیو ہیں تو پھل کو اپنے پیڑ سے توڑا تو وہ صاحب وہ پھر عجیب ہو گیا ہے, ہم نے عجیب تھوڑی کھایا, عجیب کھایا تو توڑا نا تم نے پیڑ سے تو پتی بھی توڑی تو وہ بھی عجیب ہو جائے گی. پھل توڑے گی جیسے پھل عجیب ہو جائیں گے تو پتی بھی ہو جائے گی. کیوں؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے پراسک کر لیے, چیر دیا پھاڑ دیا, بولتے کہ نہیں بولتے, تو پراسک ہو جاتے ہیں. کچے بھی کھاؤ تو اوون نے گرم کیا ابالا تو پورے پراسک ہو جائیں گے. تو اس میں سے بھی جیو کو ہم نے ابال کے مارا نا, کاٹ کے مارا نا, توڑ کے مارا نا, بولیے تو پورا اہنسک کہاں ہوگا. وہ ہمارے شاستروں میں ورنن یہ ہے کہ کم سے کم ہنسا سے نسپند ہوا, کیونکہ پورا اہنسک تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ بات آپ سمجھ لیجیے. اور ایسے یہ لکھا ہے تتوارتھ بودھ میں, جیوں جیوں پیڑے پران تیوں تیوں ہنسا اب ترے. اس کا ارتھ کیا ہے چھابرا جی, کہ جو جو پران بڑھتے جاتے ہیں تیوں تیوں ہنسا زیادہ ہوتی ہے. مطلب کوئی چار پران کا دھاری ہے, سمجھ گئے نا, کون ہے چار پران کا دھاری؟ ایک اندری جیب جل, سمجھ گئے نا, ایک اندری کائے بل اور آیو سوسو سے پاس چار ہوئے نا. اب دو اندری میں 5 پران, 3 اندری میں 6 پران. تو جو جو پران بڑھتے جاتے ہیں سمجھنا, تیوں تیوں ہنسا اوترے. چار پران والے کو مارو کاٹو پیٹو تو کم ہنسا ہے, اور 5 پران والے کو زیادہ ہے. اور پھر اور آگے آگے بڑھتے جائیں گے پھر سونی پنچندری کو پھر منش کو تو اتنی اتنی ہنسا بڑھتی جاتی ہے. ایسی پریبھاشا دی ہے جیوں جیوں پیڑے پران, پرانوں کو پیڑا پہنچے ایسا ارتھ نہیں. یہ پران بڑھتے جاتے ہیں تیوں تیوں ہنسا. اپنے کہتے ہیں نہیں کہ دو اندری ہوا تو اس میں مانس کا دوش ہو گیا. تو جیسے ایک اندری مرا تھا دو اندری مرا, لیکن فرق یہ ہے کہ ماس میں پھر اسنکھیات جیو نرنتر اتپن ہوتے ہیں جو کہ ایک اندری میں نہیں ہوتے ہیں, اپرتشت پرتیک میں نہیں ہوتے ہیں, سادھارن میں تو ہوتے ہی ہیں. یعنی میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ادھا کرم پاپ کرم کیوں ہے. اس میں جو پڑھا ہے جیتن سادھا نے لکھا اس کا ارتھ کر رہا ہوں. میں کوئی بھی وادست وشے میں وہ نہیں کر رہا ہوں. خیال میں نا जो पाप कर्म कर आहार निपजे ताकू अधा कर्म निष्पन्न कहिए, तथा जो आहार किसी के निमित्त उपजे ताकू उद्देश्य कहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार जैनेन्द्र वर्णी अनेक ग्रंथों के उल्लेख के आधार पर सारांश के रूप में अधा कर्म और उद्दिष्ट आहार को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिन कार्यों के करने में जीव हिंसा होती है उन्हें अधा कर्म कहते हैं। ठीक है, अधा कर्म युक्त किसी भी पदार्थ की मन वचन काय से साधुजन अनुमोदना नहीं करते, न ऐसा आहार व बसती आदि ग्रहण करते हैं। अरे आहार के साथ में ये बसती भी लग गया, ये बसती क्या है? दक्षिण भारत वालों को तो समझाने की जरूरत नहीं है, वहां तो इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है। किसी भी तीर्थ पे जाएं तो जो धर्मशालाएं होती हैं और खासकर साधु संतों को ठहरने के लिए, उनको बसती कहते हैं, बसती बसती लिखा रहता ना उन पर। अब आजकल उत्तर भारत में बसती किसे कहेंगे? बोलो पंडित, धर्मशालाओं को हैं? पूछ, हाँ देखो, संत निवास जो बन रहे हैं वो बसती हैं। मैंने स्पष्ट हो गया ना कि गृहस्थों ने संतों को रहने के लिए जो निवास बनाए उन्हें संत निवास कहते हैं। क्यों? देखो जरा समझना, एक क्या समस्या है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं स्वरूप, कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या हर गांव में पहले अपने गृहस्थों के घर थे और उनके साथ में एक मंदिर था, क्यों? तो एक धर्मशाला कम से कम होती थी। हर गांव वाले इतनी आवश्यकता अपनी समझते थे कि एक मंदिर और एक घर, 10-20 घर, एक मंदिर और एक, वो क्या बोलते हैं, धर्मशाला, ये होती थी। और धर्मशाला में कोई यात्री आता था बाहर का तो वो ठहरता था, अब जब शादी विवाह होते थे तो उस गांव के लोग भी जाके ठहरते थे और इस हिसाब से बनाते थे कि भोजन बनाने की जगह ये, शादी विवाह वाले भी भोजन बनाते थे और बाहर के यात्री आते थे, यात्रा करने जाते थे ना, और वो ठहरते थे तो वे भी भोजन बनाते खाते थे। समय शिखर की यात्रा पे कोई निकला तो हर गांव में रास्ते में मिलेंगे, तो जहां जहां गांव में जैन मंदिर होगा, गृहस्थ रहेंगे, तो वहां धर्मशाला होती थी, वहां वे यात्री ठहरते थे। तो उन यात्रियों को ठहरने का और वो शादी विवाह के काम आए, माने जो फंक्शन अपन अपने घर में नहीं निपटा सकते, गरीब लोग हैं ना, इतने बड़े घर नहीं है, पहले बड़े रईस लोग होते थे, वो तो इतने बड़े घर बनाते थे कि शादी विवाह भी घर में ही निपट जाती थी, अन्यथा उसके लिए एक अलग मकान बना के रखते थे। राजस्थान में उसे नोहरा नोहरा कहते थे, हमारे बुंदेलखंड में बाखर बाखर कहते हैं। बाखर कुछ नहीं है, बा घर माने वह है घर, एक घर तो जे जहां हम रहते हैं और दूसरा वह है घर माने वो बड़ा घर दूसरा, तो ऐसा होता था। अब वो धीरे धीरे विदेश धर्मशालाएं हैं, गृहस्थ लोग तो अपनी सुविधा के हिसाब से होटलों में की तरफ बढ़ गए, उनने भी तरक्की की, और जो जंगल में बस्ती में रहने वाले संत थे वे उनने आगे धर्मशालाओं पर कब्जा कर लिया। ये ऐसा होता है यहां पर, यहां जयपुर में भी होता है कि कोई धर्मशाला परिसर में चौमासे में किसी गृहस्थ को नहीं दी जाएगी, शादी के लिए दी है तो कैंसिल कर दो, क्यों? इसमें कोई भी साधु संत आकर आ सकता है वो ठहरेगा, नहीं तो वे कहां जाएंगे, ऐसा आदेश हो गया था। और अब गांव गांव में भी ये समस्याएं खड़ी हो गई, ये महाभाग्य से अपने हिंदी प्रांत में चौमासे में शादियां नहीं होती, اس لیے وہ پرابلم کم ہے. جب ان کے چوماسے ہوتے ہیں, جب شادیاں نہیں ہوتی, جب شادیاں ہوتی ہیں تو چوماسے بھی نہیں ہوتے. گجرات میں تو ہوتی ہیں شادیاں خوب جم کر کے, برسات میں بھی. خیر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اسی بات جانے دو. تو وہ دھرم شالائیں جو بالکل پیور گرستوں کے حساب سے بنی تھیں, کیسے کیوں مانے, کیسے مانے ہم کہ گرستوں کے حساب سے بنی ہیں؟ سابرا جی کیا کوئی پرمان آپ کے پاس؟ ارے اس میں الواری بنی ہے, اس میں کندا لگا ہے, اس میں تالا لگانے کی ویوستھا ہے. منی راجو تالا لگانے کی ویوستھا رکھتے نہیں ہیں. رسوئی بنانے کی جگہ ہے, چولہے بنے ہیں. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ ان کا اپیوگ کرنے والے لوگ تو اس میں آگے روکیں گے یا نہیں؟ منی راجوں کے لیے جو جنگل میں بسدی بنائی جاتی تھی, گرست بناتے تھے, تو ان میں معلوم کواڑ نہیں ہوتے تھے. تالا تابی تو بہت دور کی بات ہے. آپ سمے سگر میں جاتے ہو نا, تو وہ جو کون سا نالا ہے, دو نالے ہیں نا, تو ان میں جو کچھ بنے ہیں نا کمرے, ان میں آج بھی پھاٹک نہیں لگے ہوں گے. کیوں پھاٹک کیوں نہیں لگاتے ہیں اتم بتاؤ, سوچو کیوں پھاٹک لگائیں گے؟ ایک گرست آئے گا اندر سے کباڑ لگائے, کنڈی لگائے گا, وہ سو جائے گا. اب باقی یاتری یہاں وہاں بھٹکتے ہیں, سمجھ گئے نا؟ وہاں پر بھی 100 کمرے تو بنیں گے نہیں. پرانے کے زمانے میں اس میں تالا کنجی کتاب اختبار ہے ہی نہیں. تو جو وہاں لیٹا ہے وہ لیٹا ہے, دوسرا آئے گا بغل میں جگہ ہوگی وہ لیٹ جائے گا, تیسرا آئے گا وہ بھی کھڑا ہو جائے گا, لیٹ نہیں پائے گا. تو جتنی جگہ ہے وہاں اتنا لوگ تو کم سے کم اسے پورا لابھ لے لیں گے. اور سادھو جن بھی اس میں ٹھہرے ہیں تو وہ دوسرے بھی آگے ٹھہریں گے, نہیں تو بھی اندر سے کنڈی لگا کے سو جائیں گے. اسے کنڈی نہیں لگانے کا مطلب آپ سمجھ لو, جتنے دھرم شالائیں بنتی تھیں اس سے زیادہ دالانیں بنتی تھیں. دالان جانتے ہو کیوں بنتی تھیں؟ کیوں کہ جس کو کمرہ نہیں ملے گا وہ ڈالان میں سو جائے گا. آج ہال بننے لگ گئے ہیں کیوں؟ یاتریوں کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے, دو بھی نہیں آئے وہ اکٹھے 20 آ جائیں. اس طرح کے وہ بنتے تھے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آہار کے ساتھ میں یہ بسدی بھی جوڑ دی, کہ یہ ادھا کرم ہے. بولے سوچو بہت گمبھیرتا سے, یدی یہ میں پڑھنے کو نہیں ہوتا, ساتھ نہیں ہوتے تو میں نہیں بول سکتا تھا, بولتا تو میں پھر پوری زندگی نہیں جی پاتا. کیا لکھا ہے نا, ادھا کرنے ہیں نا, کیا لکھو پڑھو. پن جنہوں سدھانت کوش میں لکھا ہے, جن کاریوں کے کرنے میں ہنسا جیو ہنسا ہوتی ہے انہیں ادھا کرم کہتے ہیں. ادھا کرم یوکت کسی بھی پدارتھ کی من وچن کار سے سادھو جن انبودنا نہیں کرتے. یعنی کرت کارت تو ہے ہی نہیں, بناتے نہیں ہیں, بنواتے نہیں ہیں, پر اچھا بنا یہ انبودنا نہیں کرتے, لکھا نا کلیئر. اور نہ ایسا آہار و بستی آدی کا گرہن کرتے ہیں. جو ان کے لیے بنائی گئی ہو تو پرانے زمانے میں بسدی تو بنائی ہوئی ہوگی نا, یہ ان کے لیے کے کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہ گفائیں ہوتی تھیں, جیسے بھدرواؤ کی گفائیں اپنے آپ بنی بنائی ہوتی تھیں, ان میں جا کے سادھو سنت نواس کرتے تھے. اب دوسرا سننا کہ ان کے لیے بنائی گئی ہو بسدی, سادھوؤں کے لیے بنائی گئی ہو بسدی, وہ اس کا اپرادھ انہیں نہیں ہے. تو سمجھنا بھید وگیان, پھر سمجھو کیا. سامانیہ ہم نے سمے سگر میں ایک بسدی بنا دی کہ سادھو لوگ یہاں سے پار نکلتے ہیں تو ان کو ٹھہرنے کے لیے ہو جائے گی. اپنے گاؤں میں بھی ایسی بنا دی, تو اس میں گائے بھینس بھی چلے جائیں گے نا, بیٹھ جائیں گے, پشو بھی کہ باہر نہیں لگے ہوں گے, تو اس میں دوش نہیں ہے. لیکن اپنے یہ مہاراج ہیں, ان کا یہاں چوماسا ہے, تو یہاں پوری اپنی بسدی بنا دو, جیسے میں جی ٹھہرتے ہیں ویسا, تو انہی کے نمت سے بنائے تو اس میں وہ نہیں ٹھہرتے. سمجھ گیا آپ؟ کیونکہ بننا تو ادھا کرم ہے, وہ کسی کے نمت سے بنائے. لیکن ہم پہ دوست کب آئے گا؟ جب ہمارے لیے بنائے. یہ ہوتے ہیں نا مکان بناتے ہیں نا, تو مکان بنانے کے پہلے وہاں مزدوروں کو رہنے کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں, ہے نا, اینٹیں کھڑی کر کے اوپر سے ٹین من میں ڈال کر کے, اور یہاں تو دو سال تک مزدور کام کریں گے تو ان کو رہنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے کہ نہیں بنائی جاتی ہے؟ امریکہ میں تو انجینئر بھی وہیں جنگل میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی گھر بنائے جاتے ہیں, لیکن وہ گھر پہیوں والے ہوتے ہیں, اور اس لیے اپنے اس سے موٹر سے لے جا کر کے دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں گھر, اور پھر وہاں سے جو کام نبڑ گیا تو لے جاتے ہیں دوسری جگہ. اپنے ہاں وہ ایسا ہے نہیں, تو وہیں بناتے ہیں اور پھر انہیں بعد میں توڑ ڈالتے ہیں کہ نہیں توڑ ڈالتے ہیں. ان مہاراج کا چوماسا ہوا تو ہم نے 10 بنا دیے اور بعد میں توڑ ڈالے, کیوں؟ تو وہ انہی کے نمت سے ہو گئے نا, تو ایسی بسدی کو وہ گرم نہیں کرتے. ادھا کرم گرہ سے تو اپنے گھر میں روزی نہ روٹی بنائے گئی, اپنے دیش سے تو بنائے گا نا, تو وہ ادھا کرم تو ہے ہی اور اودیشک بھی ہے, لیکن وہ منیاد کو وہ اودیشک نہیں ہے. کیوں؟ کسی کوئی منیراج آئیں گے تو ہم انہیں آہار دیں گے, دروازے پہ کھڑے ہو گئے تو بھی وہ کوئی منیراج آئیں گے, ایسا ہے نا, یہ فلاں منیراج کے لیے نہیں ہے. تو ان کو دادا سنو, اب آئی مطلب کی بات, اب وہ ادیشک نہیں ہوگا, بنے گا تو ادیش سے ہی, سمجھ گیا نا. لیکن وہ ان منیراج کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, یعنی تم میرے لیے بناؤ ایسا ہے ہی نہیں, بناتے نہیں, بنواتے نہیں, انبودنا نہیں کرتے, پھر بھی یدی ہو تو اس کا اپیوگ کر لیتے ہیں, بسدی کا بھی اور آہار کا بھی. اس لیے شاستروں میں ایسا لکھا, پرتیک گرست کی ایک ڈیوٹی ہے. کیا ہے ڈیوٹی بھیا؟ کہ روزانہ بھوجن کرنے کے پہلے دروازے پہ منیراجوں کے آنے کا جو سمے ہے, پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گئے, چاہے گاؤں میں منیراج ہوں چاہے نہیں ہوں, اور منیراج آئے تو آہار دے دے گئے, اور نہیں آئے تو سمے نکل جائے تو پھر جا کے آہار گرہن کرے, تو اسے منیراجوں کو آہار دان کا پھل مل جائے گا. ایسا شاستروں میں ایسا میں تم کھڑے ہیں گرست اور تم پہنچ گئے تو ہوگا. اب یہ کیسے نبھے گا ایسے کہ ہم 100 کلومیٹر دور تک کوئی جینی کا گھر ہی نہیں ہے, وہ گاؤں میں کوئی کیسے کھڑا ہوگا؟ کیوں؟ اب ساتھ میں بیل گاڑی یا بس لے کے چل رہا ہے, اور پہلے زمانے میں ہماری آنکھوں میں دیکھیے بیل گاڑی بھی لے کے چلتے تھے, اور اب بسیں لے کے چلنے لگ گئے ہیں, تو اب تو وہ اسپشٹ ہی ہے نا, اور بس کے لیے چندا کی ویوستھا بھی ہم ہی نے کی ہے, پھر کیسے بچیں گے ہم؟ اس لیے بھائی دادا ہم بہت بچاؤ کر لیں گے شاستر کے حساب سے اور بھاو لیں گے سنتوں کا, لیکن جو مطلب کسی ویکتیگت آج میں کسی ویکتیگت کا تو کہیں کوئی سنرکشن کیا نہیں جا سکتا, سمبھو نہیں ہے. ہم نکال سکتے ہیں کہ ان کا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ ان کے لیے ادیشے کا آہار نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ گئے کہ نہیں 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 وہ تو تمہارے ادیش منیاد کے ادیش سے ہی بنایا ہو تو ادیشے کو ہو گیا, تو پھر تو بھوکو ہی مرنا پڑے گا, سمجھ گئے نا, وہ بھاولنگی کو بھی بھوکو ہی مرنا پڑے گا. تو پنچم کل کے انت تک بھاولنگی منیراج ہوں گے, یہ بھی سمبھو نہیں رہے گا. آپ نے سنا ہے کہ انتم کال تک ایک ارکا ایک منیراج اور ایک شراوک اور ایک شرابکا چار زندہ رہیں گے اور بے ان کو آہار دیں گے اور بے لیں گے تو گورنمنٹ کے کرمچاری آ جائیں گے کہ ٹیکس دو کچھ نہیں تو سیوا کر تو لگے گا سروس ٹیکس ہے نا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اتنا ہی جو بھوجن بنا رہا جی ہے اور مہاراج تو امید ان کے پاس تو ہے ہی کیا کہ پہلا کور تم ٹیکس میں دے دو دوسرا کور تم کھاؤ میں نے پہلے ٹیکس دے دو تب وہ پھر منیراج آہار چھوڑ کے چلے جائیں گے بھوجن نہیں کریں گے اور پھر وہ گرست بھی بھوجن نہیں کریں گے اس طرح وہ گرست اور منی آرکا اور سابقہ ان کا مرتیو ہو جائے گی تو چاروں سورگ چلے جائیں گے اور یہاں پرلے ہو جائے گا. اس سے ایک بات سدھ ہوتی ہے جہاں دھرماتما نہیں رہتے ہیں وہاں پرلے ہو جاتا ہے. کیا سدھ ہو گیا نا؟ دیکھو یدی پاتر اپنے چت میں اپنے لیے بنے آہار کا, سنو وہ سیم کے لیے ہے, منیوں کے لیے بنے ہوئے آہار کا نہیں. منیوں کے لیے ہوئے تو لے گئی, کیوں کہ نہیں تو اتنا شدھ نہیں ہوگا. وہ آہار کا اتوا بھوجن کے اتپادن سمبندی کسی بھی پرکار کا وکلپ کرتا ہے تو وہ بھاو سے ادشت ہے. اب بھاو پرتکرمن دل پرتکرمن بتا رہے اس کا ادھارن دے. ایسا آہار سادھو کو گرہن نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا جینند بنی نے جینند سدھانت کوش میں لکھا ہے. اب اکت کتھن سے میں آہار کے ساتھ ساتھ بستی رہنے کا استھان کی بھی چرچا ہے. تاتپر یہ ہے کہ رہنے کے استھان کے نرمان میں بھی آرمب جنت ہنسا ہوتی ہے, اتا وہ بھی ادھا کرم ہے. اتا بستی کے نرمان کاریہ میں بھی سادھو جنوں کو من وچن کائے اور کرتکارتھ انمودنا سے دور رہنا چاہیے. اب جی سوامی جی ادھا کرم اور دیسک آہار کو اس پرکار سمجھاتے ہیں. یہ کانجی سوامی کا ہے, اپن کل پڑھیں گے, آج آج کا سمے ہو گیا ہے, لیکن آپ اس پہ گمبھیرتا سے وچار کرنا. کسی ویکتی وشیش کو لکش میں مت رکھنا, سمجھے نا, نہ آج کے نہ کسی کے, لیکن ایک سچے منیراج ہوں اور بے ادھا کرم اور ادیشک آہار کے تیاگی ہیں تو وہ اس دشٹی سے ادھا کرم کا ارتھ کیا ہونا چاہیے اور ادیشک کا ارتھ کیا ہونا چاہیے اپنے جناگم کے آدھار پر اس کے بارے میں اپنے چت میں وویک سمت نرنے کرنے کا پریاس کرنا ہے.